أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج مئی 1981 کی 8 تاریخ ہے. صاحب کا درس ہے سورہ حامیم السجدہ، 41 سورت کی 40 آیت کی، لیکن آیت کا آدھا حصہ دیش کے خدمت کیا گیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آگے چیز ایسی آتی ہے جس میں وقت زیادہ چاہیے، اسے ہم نے آج کے درس پر اٹھا رکھا تھا. جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے، ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس نے اس کو مسلسل صدیوں سے، ہزاروں سال سے وقت سے اضطراب رکھا ہے، مسلسل اس کے حل کی کوششیں کی جاتی رہیں اور اس کا حل نہیں ملا. عام الفاظ میں اسے تقدیر کا مسئلہ کہتے ہیں. قرآن کریم نے آ کر اس کو نہایت سادہ سہل انداز کے اندر حل کر دیا. بہت بڑی چیز یہ آج بجلی ہے نہیں، تو یہ کوشش کریں گے ہم مل جل کے کوآپریٹ کر کے، ذرا آپ آگے آ جائیے، تھوڑا سا کوشش کیجیے. بجلی ہے نہیں آج، یہ پہلے اناؤنس ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہ ذرا سا راستہ چھوڑ دیجیے درمیان میں، تو راستہ کھلا چھوڑ کے باقی چیز آنی چاہیے اس میں، راستے میں تو نہ رکھیے نہ یہ کرسی. قرآن کریم نے آ کر اس کو حل کیا، پوری نو انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا. حضر اول کے مسلمان کے جن کا عمل قرآن کے مطابق تھا، انہوں نے پھر چند سال کے عرصے کے اندر کسی ایک تقدیر کے مسئلے کو صحیح معنی میں جو سمجھا ہے، تو اس کے بعد نہ ایران کی تہذیب باقی رہی نہ روما کی سلطنت باقی رہی. انہیں تو کہا گیا تھا سفر الگ ہوں معافی سماوا کے اندر زمین ہم نے زمین نہیں، زمین اور آسمان خارجی کائنات کی ہر شہر تمہارے لیے انتاب تقسیم کر دیے. جس انسان کے تازے تقسیم ساری کائنات ہو گئی ہے، جب وہ اس راز کو پا لیں تو پھر یہ ارد گرد کی سلطنتیں اور حکومتیں کیا کیا گئی، صرف اس ایک مسئلے کے سمجھنے سے نکل کے کی جاتی. ایران نے جب اس کے بعد بدلہ لیا ہے مسلمان سے، وہ جو رمضان نے آگے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران کا گورنر تھا، قید ہو کر پاپ جولا آیا تھا، اس میں پہلے بھی یہ باتیں آ گئی لیکن موقع ایسا ہے کہ اس کو اس کا دوہرا دینا. تو آپ نے کہا تھا حضرت عمر نے کہ رمضان یہ بتاؤ، اس سے پہلے تم ایرانیوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم عربوں کے ساتھ صلح اور دوستی کو ایک طرف، تم دشمنی رکھنا بھی اپنے لیے باعث آر سمجھا کرتے. جنگ کی بات ہوتی تھی تو تم دستکار دیتے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا کیا چاہیے، کیفیت یہ تھی. ہم بھی کبھی مقابل میں نہیں آئے تو تمہاری یہ کیفیت تھی عربوں کے ساتھ، آج یہ کیفیت ہے کہ وہی عرب ہیں وہی تم ہو، یہ یہاں سے اٹھے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ ساری مملکت تمہاری انہوں نے فتح کر دی، تمہارا شہنشاہ جان بچانے کے لیے مارے مارے پھر رہا ہے، وہ پنچکی میں جا کے اس کو جو مر گیا تھا نا جان دی. کہنے لگا میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عمر نے کہا کہ یہ تبدیلی ہوئی کس طرح سے، کیا راز ہے اس کے اندر. یہ مجوسی ایرانی ہرمزان یہ بتا رہا ہے کہ عمر بات بڑی صاف اور پہل کی ہے. پہلے جب مقابلہ ہوتا تھا تو ایک طرف عرب ہوتے تھے دوسری طرف ایرانی ہوتے تھے، تنہا عرب ہمارے سامنے آتے تھے تو ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی. اب جو آتی ہیں تو ایک طرف تنہا ایرانی ہوتے ہیں، دوسری طرف عرب، اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے. इनका मुकाबला ईरानी को एक कर सारी दुनिया मिलकर ही नहीं कर सकेगी। ये था राज। और ये जो चीज थी कि खुदा साथ होता है, ये महज नजरी चीज नहीं थी कि कदर से उन्होंने ये बात क्या की हो। हमारे यहाँ के अल्फाज का कुछ मफहूम नहीं रहा है। खुदा कैसे साथ होता है, खुदा कैसे साथ होता है, कोई मफहूम नहीं रहा हुआ। वो जानते थे। और ये सारा यही जो मैंने अर्ज किया है कुरान की रूह से जो तकदीर का तसव्वुर था वो था जो इनकी समझ में आ गया था। उसके माने तो खुदा साथ होता है। उन्हें क्योंकि इसका इलम था और ये तकदीर का मसला यानी ही का था। इस जमाने में ये सबसे ज्यादा अहमियत जो दी गई थी इसको, ये ईरान के मदरसे में इसको दी। थोड़े से अरसे के बाद जब फिर इस कौम ने कुरान से अलग होना शुरू किया तो ईरानियों ने फिर वो बदला दिया। शिकस्तुर्दा ईरानियों ने जो मैदान जंग में शिकस्त खाई थी, उन्होंने फिर जहनों और दिलों की दुनिया के अंदर इनसे बदला लिया। और सबसे पहले यही तकदीर का मसला इनका दिव्य ईमान बना दिया। यानी खुदा ने तो पांच ही अल्लाह ईमान कहे थे, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, अंबिया पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, सारे कुरान में पांच ही हैं। ये इन्हीं का इनकार कुफर है, इन्हीं का ईमान ईमान है। इन्होंने आकर ये छठा जुज़ ईमान दाखिल कर दी। बल कदर खैर ही वो चल रही अल्लाह ताला, आपके ईमान का जुज़ है। ये अंदाजा लगाइए इसे साबित कर। उन्हें पता था कि इस चीज को इनका जुज़ बना दीजिए, इतना ज्यादा राशक कर दीजिए कि इनके ईमान का जुज़ हो जाए। किसी ने इनसे पूछा कि बाबा वो तो खुदा ने पांच में गड़ी दिए, उन्हीं का जिक्र सारे कुरान में आता है। ये छटा चलिए, एक मसला सही, कोई एक नजरिया सही है, कोई इस अंदाज से कोई इन्हीं बहस की बात ही करो। जुज ने ईमान बना दिया, छटा ईमान का जुज। और जब ये बना तो खैर उसके बाद वही कौम जो एक तरह सोजा दबाना थी, रास्ता ढेर बन कर रहा है। यही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मामला खत्म। सब काम अपने करने तकदीर के हवाले, नजदीक आर्खों के तकदीर है तो ये क्या तकदीर। इस हद तक फिर आगे फिर शायरों के हथे चले। फिर तो बगल के अंदाज का है, बस मानी के बगल में हुई। मर्जी यार के खिलाफ न हो, लोग मेरे लिए दुआ न करें। ये है अब जो यहाँ तक पहुँच गए तो सब काम आपने करना चाहिए। तो फिर वो फॉर्म तो क्या हो, तो रास्ता है, मुसलमान नहीं रास्ता है। बुरी इसकी आ गई, मुसलमान नहीं रास्ता है। ये रास्ता ढेर चला आ रहा है, जाकर हर तेज हवा आती है इसको उड़ा के भेजा के जहाँ ठीक है। इन्हीं की आंखों में वो रात पड़ती है, अंडा कर देती। मैंने अर्ज किया है कि सवाल बहुत मुश्किल भी बजाहर ऐसा कि बहुत ज्यादा वक्त तलब भी, और दर्श में तो ये दूसरी मरतबा के जहाँ भी कोई आयत आई है इसके मुतालिक मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मैं इतनी तफसील में कहीं जा रहा हूँ। मैं अर्ज करूंगा कि कुरान ने इसे एक लफ्ज़ में क्या कर दिया था। आप भी हैरान होंगे, वाकई की पहली बार सुनेंगे वही हैरान होगा। तो क्या कह रहा है वो मसला जिसने अरस्तु अफलातू के जमाने से लेकर आज तक जिन्होंने इंसानी के वक्त पर इकरार रखा है, और वो फिर इतनी अहमियत अख्तियार कर दिया कि इसका उलट मुसलमानों का जुजिए ईमान बन गया। तुम कह रहे हो कि इसने एक लफ्ज में तय कर दिया। आप सुनेंगे तो हैरान होंगे, एक लफ्ज में तय कर दिया, ये दो कह लेंगे। जरा थोड़ा सा इसका पास मंजर जो है बड़ा जरूरी है। अल्लाह ताला ने अपना सारा कार इसको कही। अब हमारे लिए अल्फाज और नहीं है, इसलिए यही अल्फाज बोलने चाहते हैं, वरना खुदा के लिए दारा कार कहने देते हैं। लेकिन उसने तकसीम किया है दो दवाए में अपने प्रोग्राम के। एक उसने कहा है कि आज में अमर है, वो आलम अमर है जिसमें खुदा के प्रोग्राम की सीरियत तैयार होती है, वो खुदा के की नसीहत जिसे कहते हैं, उसका इरादा, उसका हुक्म, उसका मंशा उसके मुताबिक होता है, उसके लिए कोई फायदा नहीं, कोई कहीं नहीं। कुरान में ये जो आयात आती है ना, यहकुम माजरीदो वजहालो माजाओ, जैसा चाहता है हुक्म देता है, जो चाहता है करता है, ये आयात सारी आलम अवसर कर लेते। नमक को नमकीनी क्यों मिली, शहद को चीनी क्यों मिली, ये क्यों का जवाब है, ये मसीह को खुदाबंदी कंसिया क्यों बोलो, क्या पानी क्यों में मुद्दे हजार है, आलमी नसीहत या आलमी अमर में साथ लेंगे। हम नहीं कह सकते कि आखिर की क्यों थी, किस कायदे के मुताबिक थी, कायदे और कानून से, हमारी मंतक से, हमारी तजीहा से बुलंद और बाला है। वो आलम अमर है जिसके मुताबिक हम कुछ समझ नहीं सकते। वो खुदा की लामहदूदियत जो है वो इसकी दुनिया है, हमारा जहन महदूद है, महदूद जहन लामहदूदियत के मुताबिक कुछ समझ नहीं सकते। लेकिन ये जितनी भी स्थिति की आया कुरान में आए, जो चाहता है करता है, जैसा चाहता है जब इरादा कर लेता है तो ये चीज हो जाती है, वही खुदा की स्कीम या राह तय हो जाती है कि ये ऐसा होगा, तो फिर वो जिसे इस मासूस दुनिया में, मासूस कैकरों के अंदर, नाद्य की दुनिया के अंदर, मरी कायनात पर सबल यूनिवर्स, वो उसमें जब भेजता है इस प्रोग्राम को एक मासूस शक्ल में, तो यहाँ के मुतालिक उसने कहा कि सब जाल अल्लाह हो लेकिन शायद सदर कैसे बता दी कि फिर हम हर शय के लिए हमने कानून बना दिया, कायदा बना दिया। कानून है ये कि इतना संख्या जो है वो कहो जो बाकी के मसले के मुताबिक, तो वो तकलीर देगा जरा उसके बढ़ोगे तो मोड़ोगे, ये पैमाना है उसके लिए मुकर किया, ये कानून है उसके लिए मुकर किया। ये कहा वो तुलने से कायनात की हर शय के लिए इसने एक कानून बना दिया, इतना पानी मुमुद्दे हजार, किसी पानी में डूब के मर जाता है वो क्यों मोलक हो जाता है, मुझे उसने पैमाना साफ दिया था ना पानी को, इस हद तक पानी में मुझे हजार था, ये उसकी खबर पैमाना खबर तो माने पैमाना होता है। यही हमारे अल्फाज में इन्हीं चीजों को उसका कानून कह लीजिए, इस हद तक पानी मुमुद हयात है, ये उसका कानून है। इससे आगे जाइए तो वही पानी जो है ये मुहलक हो जाता है, ये पानी की ये तकदीर, पानी का ये स्वाद है, ये तस्वीर है, ये कानून है, ये सुनने से यहाँ उसने ये मुकर्रर। अब जो अशिया हैं उनके मुतल्लिक तो ये मुकर्रर कर दिया और वो मजबूर हैं इसके मुताबिक चलने के। पानी को अख्तियार इसका नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जी चाहे तो मुझे हयात हो जाए और जी चाहे तो मर जाए, ये उसकी मर्जी की बात नहीं कि जी चाहे तो निषेध की तरफ बहे और जी चाहे तो फराज की तरफ, बुलंदी की तरफ बहे। ये आपके अख्तियार में नहीं है कि कभी वो आपको हरारत दे दे और कभी चाहे तो ठंडक पहुंचाना शुरू कर दे। हर शह के लिए कानून मुकर्रर है और दुनिया की हर शह उस कानून पर चलने के लिए मजबूर है। इसे कहते हैं हर शह की फितरत। फितरत वो खासियत होती है किसी शह की जिसे वो बदल न सके, जो उसके अंदर हो, कहीं से सीखी हुई ना हो, कहीं से मुसार न ली हुई, उसके अंदर ये हो और वो उसे बदल न सके। फितरत अशिया की होती है, इंसान की नहीं होती। इंसान के मामले में यहाँ आकर एक इस्तिस्ना होता है, एक्सेप्शन होती है, और वो ये कि कवानीन तो उसके लिए भी ले दिए लेकिन किसे ये कायदे इरादा बनाया कि तुम्हारा जी चाहे तो इसके मुताबिक तुम चलो, न जी चाहे इसके खिलाफ। ये तीर ये कानून वो तो नतीजा अपना मुरतब करते रहेगा, जैसा पहले से तय है खुदा के हाल में अमर। गलत निजाम तबाही लाएगा, ये खुदा के हाल में अमर का फैसला है। सही निजाम खुशहालियां देगा, ये उसके हाल में अमर का फैसला। अब ये इंसानों के ऊपर है कि जी चाहे तो वो सही निजाम कायम करे, जी चाहे तो वो गलत निजाम कायम करे। ये इस हद तक तो इनके इख्तियार में, इनके इरादे में है। ये बात के वो जो जिस किस्म का निजाम कायम करे, नतीजा उस किस्म का ये नाम निकले, ये इनके बस की बात नहीं है। यहाँ ये मजबूर हो जाए इन्ना हदायना कबीरा, इन्ना साकरम व इन्ना कबीरा। मुतद्दद आयात इस किस्म की कुरान करीम के अंदर मौजूद जैसा बता तीन है। इस तरह समन शाह फल युम समन शाह फल यक्ष, हमने रास्ते दिखा दी, दोनों रास्ते दिखा दिए हैं इंसान, दोनों रास्ते। याद रखिए जब भी किसी चीज के किसी के सामने दो रास्ते हों, टू पॉसिबिलिटीज हों, तो वो साहब इख्तियार होता है। अगर एक ही रास्ता हो तो फिर उसमें तो इख्तियार की बात नहीं होती है, किसी को चलना है। कुरान का तो एक लक्ष्य जितने बुलंद हकायक है उनकी वजाहत करा जाता है, करता चला जाता है। नजबैन कह के कुरान ने यह बता दिया, दो रास्ते जब किसी के सामने आए किराए थे तो वहाँ उसका अख्तियार होता है, जौन का रास्ता जीता अख्तियार करे, दोनों में टू पॉसिबिलिटी। जौन का जीता है ये रास्ता अख्तियार कर, जिस रास्ते पर ये अपने इख्तियार से चलेगा वो रास्ता उस मंजिल पर पहुंचा देगा जिसकी तरफ वो ले जाएगा। ये नहीं होगा कि चले ये एक रास्ते पे और पहुंच जाए दूसरी मंजिल। अब ये किसकी दुनिया, इंसान की दुनिया। सुन लीजिए आलम अमर जिसमें कोई मुकर्र कायदा कानून नहीं, खुदा की नहीं ये सा वगैरह जहाँ कुरान में लौटा ये आलम खल्क जिसे कायनात कहते हैं, जिसके दोस्त अशियाए कायनात उनके लिए भी कानून, लेकिन उन कवानीन में वो कायदे इरादा नहीं है तो जी चाहे तो उसको अख्तियार करें, जी चाहे उनके खिलाफ करें। तीसरा टुकड़ा इंसान का कानून उसके लिए भी बता दिए, लेकिन ये इसको छोड़ दिया कि तुम जी चाहे तो जो रास्ता अख्तियार करो, जी चाहे तो जो रास्ता। ये जो तब्दीली, ये जो इंकलाब अजीम है इंसान के जहन के अंदर, उसकी तालीम के अंदर, यहाँ तुम साहब इख्तियार हो, तुम अपने इख्तियार इरादे और मर्जी के मुताबिक रास्ता अख्तियार कर सकते, फैसला खुद कर सकते। और इसके मुतल्लिक कहा यह कि इसमें हम भी दखल नहीं, जब किसी को कायदे इख्तियार बनाया गया तो उसके माने ये होते हैं तो फिर हारे से उसके अंदर दखल नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो फिर तो कायदे इख्तियार नहीं। हाँ हम भी कवानीन के मुतल्लिक कहा था, वो कायनात के था, वो इंसान के हम तजुबे नहीं सुनना चल रहा है, हम भी इन कवानीन को नहीं बदलेंगे। क्या होगा वो कादर जिसके एक आदमी है तो सारी कायनात के बीच में आता है, जितनी अपनी नसीहत के मुताबिक वो कवानीन बनाता है, लेकिन फिर होना तो बच्चे जितनी अपनी कुदरत में इतनी साफ में अपने प्यारा के बाद अपने ऊपर पाबंदी याद करता है, हम भी नहीं अब बदलेंगे। ये चीजें आज खुद तो बदल नहीं सकती थी, अपनी तस्वीर को आज बदल नहीं सकती थी, वो संगल से जाने के लिए करते तो कहा हम भी नहीं बदलेंगे। तो कितना यकीन हुआ इस कायनात में रहने वालों को, इनके लिए जरूरी इतना ही हुआ कि ये मालूम कर लें कि कानून क्या है किसी का, बस इस कवर कर कानून ही ये है ये बनाता नहीं है कवानीन को, ये ईजाद नहीं करता उनको, सिर्फ उनके ऊपर करे पड़े हुए कर्जों को सिखा देता। आदम ने जो सलाहियत उसने दी थी अल्लाह आदम ने सुनना है, तो वो यही सलाहियत थी अध्याय कायनात के मुतल्लिक ये मालूम करना कि उनकी खासियत का चीज कानून कायदा क्या है। इसकी सलाहियत दे दी गई थी आदमी को कि वो कर सकता है, अब ये करना इसके हक में है, मेहनत करेगा जो तो ये करेगा। इसने पर्दा उठाना है सिर्फ उनके लिए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है सर, कितने लिखा हुआ है, वो है लिमिटेशन ऑफ साइंस। कहा है कि वी ओनली रीड नेचर, वी डोंट राइट इट। हम किताबें जिक्र तो सिर्फ पढ़ते हैं, हम इसे लिखते नहीं। इंसानों की दुनिया के अंदर कवानीन वही है जो इनके लिए भी दिए, तो ये करोगे तो तुम्हारी जिंदगी से आदमी की जिंदगी, ये भी आने वाले खराब चलोगे, तबाहियां बर्बादियां आएंगी। अकाल कानून है। अब अगली बात फिर फर्क पड़ता है यहाँ तो तुम जान सक इस कानून चाहो अपने लिए, नतीजा अकाल है, दखल हम भी नहीं, बदलेंगे हम भी नहीं नतीजे। ये जो कुरान में आता है अरबी जुबान के अखबार से आज नसीहत यहाँ से मिली है, चाहना जिसका करना किया जाए, वो इंसानों की दुनिया में जब हम ले आए ना इन सब चीजों को इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा तो भाई वो आओगे कल शाम को 7 बजे तय हुआ है, आओगी वो इंशाअल्लाह। अब तो ये इंशाअल्लाह मजाक हुआ ना कि जब दिन में ये हो, पहले ही जाना माना मैंने है नहीं, इस वक्त ना करना भी बुरा लगता है, तो कह दो ठीक है साथ इंशाअल्लाह कह दो। अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर ना, अरे आए तुम कह नहीं, मैंने तो कहा था अगर अल्लाह ने चाहा तो आए, नहीं जाना नहीं आए, हर चीज के साथ इंशाअल्लाह। ये हवाई जहाजों में हमारे यहाँ हादसे होने शुरू हो गए थे तो जरा पहले वो बड़े बड़े हादसे हुए थे, इसके लिए ये पूछा गया था कि तजवीजें बताओ तो ये हवाजिश ना हो। आपको मालूम है शायद से ये तजवीज भी आई थी और इसके मुतलक आग्रह भी हुए थे कि पायलट हवाई जहाज चलाने से पहले वो अनाउंस करता है ना कैप्टन कि हम इतनी बुलंदी पे जाएंगे और ये होगा और इतने बजे लैंड कर जाएंगे हम रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अड्डे पर, तो उसने ये आया था कि साफ कहा करो कि हम इंशाअल्लाह लैंड कर जाएंगे वहाँ, ताकि वो रास्ते में हादसा हो जाए तो पीछे ना कोई इसको, तो क्या हुआ उसने कहा हम ये बचा लिया था, यह काम जारी है तो था आप और रोज का आपका तजुर्बा दोस्तों का इंतजार माशाल्लाह। ये अल्लाह चाहेगा, खुद फ्रेडी हो या कुछ भी हो, ऐसा आदमी बड़ा मजा नहीं, जो जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल दी जाए उसमें तो बड़ा मजा है, जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाए जिससे आप पूछ ना सके कि क्यों भाई वो तुमने ये किया है, जो कुछ हो तो इधर कहीं बैठा हो, ये चीज लाइटली ले रहे हैं तो यही जरा सा सा इसमें आ रहा है या कोई गलती सी आती है। टॉम जब इसके ऊपर आ जाए हवाई जहाज के हाथ से इस तरह बंद होंगे तो साथ ही इंशाअल्लाह कह लिया जाए आप खोज लीजिए तो फिर कहाँ गई कहाँ, हादसे के बाद वो ये देखने के लिए नहीं बैठेगी कि इसमें क्या नुक्स हुआ था, किसकी गलती थी इसके अंदर, खुदा खुदा ने चाहा नहीं था इसका वहां जाना ना अल्लाह का। और जब ये चीज हो गई आपकी तो फिर न फतह आपके अपने हाथ में, न शिकस्त आपके हाथ में, न जवाब आपके हाथ में, न अरूज आपके हाथ में, न इज्जत आपके हाथ में, न जिल्लत आपके हाथ में, न दौलत आपके हाथ में, न गरीबी आप वो मुखलिसी आपके हाथ में, हर चीज के ऊपर खुदा का कंट्रोल, आपकी जिम्मेदारी खत्म। जिस हाल में भी है आप उस हाल के अंदर राजी पर रजा रहना, जिस हाल में वो रखें मर्जी है मौला दर हम, बात तो सारी अपने की अकीदे मानने की, अगर तो खुदा का वजूद ऐसा होता कि वो सामने होता तो ठीक है, फिर भी उसको पूछ लेते कि साहब हमने तो जी चाहा था, ये जो बिगड़ गया है ये आपने बिगाड़ा है, इसके मतलब तो चलो एक बात तो होती, जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन उसको तो पूछ नहीं था। लेकिन इससे जो फरेब दिया है अपने आप को जैसा, उसने जो नुकसान पहुंचाया है वो तो काम कि आप उसके बाद अपनी किसी भी सवाल का, अपनी किसी भी मुसीबत का, अपनी किसी भी मुसीबत इसकी इंक्वायरी करने के लिए फिर आप नहीं बैठेंगे, ये नहीं देखेंगे कि इसके असबाब क्या हैं, उसकी वजूहत क्या हैं, ताकि उनका इजाला किया जाए, उनका इलाज किया जाए। खुदा की मर्जी ऐसी थी, और ये है वो चीज जो आपके साथ हुई है। जवाले असबाब जवाले हिम्मत के मुतालिक कमीशन बताते हैं क्या असबाब, असबाब नहीं है इसके, एक ही सबाब है इसका कि जो कुछ हो उसके मुतालिक कभी तहकीक आप न की जाए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइंदा कैसे नहीं होगा, कैसे अदाला किया जाए, कौन जिम्मेदार है, कुछ नहीं, सब काम अपने करने चाहिए। जब जिम्मेदारी अपनी ना रहे तो फिर उसके बाद वो अमन की बात ही खत्म हो जाए। ये कोई सूरत नहीं है ना कि जब तहकीक करें आप, अखबार दरियाफ्त करें, आइंदा के लिए कोशिश करें कि वैसा ना हो, इससे बड़ी जिम्मा होगा। और कोई इल्जाम भी ना आया, दूसरों ने इल्जाम किया देना, अपने जमीर में भी सबक पैदा ना हुई कि मेरी किसी कोताही की वजह से ऐसा हो गया, नहीं था वो तो अल्लाह को मंजूरी नहीं, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी या खुद फरेबी, क्या बात है, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ निकलना बना के तकलीफ का बात, यूं बदला लिया उस कौन ने आप। ऐसा मैंने अर्ज किया है कि साधु किसे कहते हैं, दिल में ईमान है आप, वल खद्र खैरी है मिनल्लाह। मैंने कहा था कि इतना बड़ा अहम मसला, इतना मुश्किल मसला जैसा बना हुआ है, आपने देखा इतनी तमजीद में ही कि बात कितनी साफ हो गई, ये दलायल दो अलग कर दीजिए जैसा कुरान ने किया, इनमें अमर होगा, आप देखें आपने अमर उसने अलग कर लिया है अपना, और कहा यह है कि वहां हमारी मुसीबत चलती है ना, हम जैसा चाहते हैं वो, और ये तुम्हारी दुनिया आइए, वो दो लफ्ज मैंने कहा था ईला नमन सूरह सईदा 40वीं सूरत की 40वीं आयत का अगला हिस्सा जो है दोहरा दू, जो उन्होंने कहा था कि ना हम जैसा चाहते हैं, और इंसानों की दुनिया आई कहा ए मालूम माँ से तुम, अपनी दुनिया में तुम अपनी नसीहत के मुताबिक काम करो, हमारी जो दुनिया आलम अमर है उसमें हमारी नसीहत चलेगी, यहाँ तुम्हारी ए मालूम माँ से तुम अजीजा ने मन। बहरहाल बहुत कुछ नाकों ने देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, मगर की किताबें हों या कोई किसी मगर की, जिनको मुगैना आसमानी किताबें कहते हैं, ये दो लफ्ज कहीं नहीं मिलेंगे। इस धरंदे से कहीं फलसफा या हाथ की दुनिया में भी ये अल्फाज नहीं मिलेंगे, मुनफरिद है कुरान इस मामले में, और सोचिए कि इसने इससे इंसान को मकाम क्या आता है। अपनी दुनिया के अंदर वो तो कहता हूं, अपनी दुनिया के अंदर उसने इसको अपनी दुनिया का खुदा बना दिया, वहां कहता हमारी नसीहत चलेगी, तुम्हारी दुनिया में ए मजू भाग से तुम, जहां तुम्हारी नसीहत चलेगी, ये भी मुसलमान के साथ। इसके बाद कोई गुंजाइश ऐसी है वीजा नमन की पहचाने की, इंसान जिम्मेदार नहीं है अपने काम का, अपने इरादे का, अपने काबले का, جس کے متعلق کہتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے, اس نے کہا وہ یہ کہہ رہا ہے اے نبی معاشرے تم, اور ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ خاص ہے یہ سب تکلق بھری کے دو لگ کیا دیا, اصل میں کرتے تو آپ ہی انسان کسی بندہ کا جو بھی کرتا کرایا جاتا ہے کہتے ہیں نبی معاشرے آپ کہہ کے غور کرتے ہیں کہ میں اتنا دوہرایا ہوں نبی نے, میں ان کو اس کو دس بار دوہرائیے اس قوم کے سوال میں اس کو ڈالیے دیکھتے وہ کیا کہتا ہے تمہیں جیون من کو کھیتی کی وجہ اس کا عظیم انقلاب ہے دین تو خبر نہیں کر سکتا انسان کا کہ وہ جس کی نصیحت اتنی ہے کائنات کی وہ اس کو کہتا ہے ملو ماسو تم کہا, بس اتنی سی بات یاد رکھنا کہ انہ دماغ کا مدون بسی یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ تم کرو کرنے کے بعد پھر وہ ٹھیک ہے اپنی مرضی کے مطابق نتائج بھی برآمد کر لو, یہ بات نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو, نتائج اس قانون کے مطابق مرتب ہوں گے جو ہم نے طے کر لیا, ایک ہے دیکھنے والا کیا بات ہے, لیکن اس نے صرف اپنے آپ کو دیکھنے والا کہا ہے اور ضرور ہے کہ اس کو مبت کر دیکھتا ہے صرف دخل نہیں دیتا روک نہیں دیتا آدمی کا دیکھتا دیکھتا ہے میں نے کیا خیال کیا ہے کہ لاکھ میں بارش شاید اس کی تکلیف بدل جائے گی, پاس جو چلے آتے ہیں وہ بولنے پڑتے ہیں تو تکلیف بدل جائے کیا ہمارا, اس کی تو تقدیر کوئی تقدیر چیزوں کی ہوتی ہے, وہ آپ اس کو کہتے ہیں تقریر اس کو کہتے ہیں یا ترجمہ انسان جو قائل اختیار ہے اس کی تقدیر, یہ جو چیز ہے یہ مدو ماں کے تم یہ تھا اس قوم کے سامنے آیا, جب پھر یہ اٹھی ہے یہ قوم اور مقابلے میں ایک طرف تو بہار کلانی دوسری طرف یہ عیسائیت, اس عیسائیت کا ایمان یہ تھا کہ نجات اعمال کی روح سے نہیں ہوتی, حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے کی روح سے ہوتی ہے, وہ جہاں یوں ڈوب جائے گی خیر سر کا تو اظہار کیا, میں نے کہا مطلب یہ دو قوموں کی ان کے سامنے کون سی قوم آئی, وہ قوم آئی جس کو کہا گیا تھا اے ملو معاشرے تم, اب آپ کہیں گے کہ پرانے کریم کے اس قدر واضح الفاظ اور پھر اس میں کوئی جنجلت نہیں ہے, کوئی تفصیل نہیں ہے, کوئی منطقی مسئلہ نہیں ہے, اے ملو معاشرے تم وہ کوئی بہت بڑا عربی کا عجیب بھی ضرورت نہیں, مرتبی بھی عربی زبان کا ہے عزیزہ نہیں آنے, وہ بھی ان دو لفظوں کے معنی جانتا ہے, یہ عملہ یا عملوں کو پہلا سبق دیا جاتا ہے, عملی اس میں وہ امر کا زیبہ آیا ہوا ماں جو بھی تھے تم, یعنی کچھ جنگلت نہیں ہے اس کے اندر, تو پھر یہ سوال پیدا ہوا قرآن کے قوم پر کبھی آ رہی ہے سادہ سا اتنا سا ہے یہ فکرا ترجمہ بھی باہر آ گئی تم کرے دے تم کا پھر ہوا کیا, ہوا وہ مجھے تصویر بھی آتی ہے اچھے ہمیں چاہیے یہ ابھی وہی تصویر ابھی انہوں نے کام نہیں لیا اس طرح سے کام دیتے تین مقام سے لیا ہے الفاظ سے ایک ہی جاتے آپ سے ایک ہی حوالہ ثابت کیجیے یا دے دیجیے تہتر بتا ان کی بڑی اہم آئی جہاں سے جن سہارے جس باطن سہارے سے میں یہ کہوں گا بگاڑا اس مفہوم سے بھی نبی ماں سے ہوں گے جو نظر وضاحت میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہوگا کہ اس قسم کے واضح دو الفاظ کے بعد پھر یہ کیسے بات ہوئی, اس کے بعد تو نہیں سب کرتا وہی ہے جو کہ خدا کرتا ہے انسان نہیں کچھ کر سکتا, کیسے یہ بات آئی ذہن میں نہیں آتا آپ کے سننے کیسے لائے گی, انہوں نے تو وہ ثابت کرنا تھا نا کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا مجبور لازہ کرتا سب کو خدا ہی ہے, یہ تھا ذہن میں ایمان یہ تھا وہ یقین تقریر کا جو دیا تھا انہوں نے مانگتے ہیں ان لوگوں سے انہوں نے سازش کی تھی اسلام کے ساتھ, اب انہوں نے ان آیات کے معنی وہ کرنے سے جو پہلے ذہن میں کرنا تھی کیسے کیا قرآن سے آج لیجیے 76 तो वो चलती नहीं इन्ना है वो ही तस्करा तुम कुरान के अंदर। ये कुरान जो है एक यादहानी है, एक तस्करा है। अमन सा अट्टा सदा इला रब से ही सबीला, जो चाहे तुम में से किसी भी से अपने खुदा की तरफ जाने वाला रास्ता किया था। यहाँ तो फिर वही बात आ गई, अमन सा अट्टा सदा जो तुम में से चाहे चाहे कुछ। उनको कह रहे थे कि यहाँ से कुछ किया इन्होंने, ये क्या हुआ, ये तो यही बात है कि जो चाहे अख्तियार करें। देखिए इतने हिस्से था कि वो सीधा यहाँ से गुंजाइश कोई नहीं है, तो क्या नहीं कि गुंजाइश निकलती है आगे सकती है। अगला हिस्सा जो है अमन साथ कहा जाए ला रहा, जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने वाला, तो रास्ता हमने बता दिया है और आगे है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। और इसका तर्जमा किया गया, पहले कहा कि जो तुमने से चाहे ये अख्तियार कर ले, और उसके बाद आयत का अगला टुकड़ा है साथी आयत, और उसके बाद उसका तर्जमा किया ऐ लेते हैं तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं जा सकोगे, तुम क्या वही सकोगे जो हम चाहेंगे। दीजिए महाजल्ला महाजल्ला हमें संकड़ा देंगे, यानी सबल साहब कहा जाएगा रब गई अभी माने मन हाथ की आयत में ये अल्फाज करेंगे कैसे नष्ट किया जाता है, क्योंकि वो माने तो वो लाने हैं दूसरी वाला ईमान जो है वो ना चला जाएगा। हमारे पसाऊना इल्ला इल्ला, लेकिन तुम नहीं चाह सकते वो कुछ, तुम वही चाह सकते हो जो खुदा का तुम्हारे चाहने के ऊपर भी उसका चाहिए, यानी तुम्हारा जो अमल थे अमल उससे ही नहीं कि तुम कर नहीं सकते कुछ हजूर उसके जो हम चाहें, तुम चाह ही नहीं सकते कुछ हजूर उसके जो हम चाहें। ये किया करनी और पूछा उसके बाद कि क्यों जनाब आप तक कहाँ गए बताद और इरादा और आपकी नीयत और जो चाहते हैं ठीक है। उसने कहा है कि हमने ये तुम्हें सलाह ये प्यार इरादा दिया है, तुम जो चाहो करो, लेकिन साथ उसने ये भी तो कह दिया ना कि तुम चाह नहीं सकते कुछ हो। मैं जरा समझे आप इसे जरा सा जेन में घुमा दीजिए जो मैंने अभी कहा है ना, टकराव पैदा हो रहा है अवीना ने मान, अगर यही है मान और यही है महाजल्ला महाजल्ला तो सोच लीजिए आप ऐसे खुदा से रास्ता। एक तरफ वो कहता है कि जिसका भी चाहे सही रास्ता है हम दस, उसी सांस में ये कहता है कि वो चाहने वाली बात जो है तुम्हारी अपनी तुम क्या ही नहीं सकते थे जरूर उसके लिए हम क्या बड़ी अजीम चीज है। आप आबाद में भी मेरा ख्याल है अरबी जानने वाले अरबी जुबान के कायदे की रूप से ये जो अल्फाज है माताऊना ने मन खुदा न करता ये नहीं होता कि मैं अपनी तरफ से कुछ चीज कहता हूँ, मेरे नजदीक को इससे बड़ा जुर्म बार गए खुदाबंदी में कुछ नहीं कि खुदा का कलाम हो और मैं अपनी मंशा के मुताबिक उसका कुछ नकल तैयार कर दूँ। आज अल्लाह मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि अब भी जहन्नम अपने लिए नहीं है, कोई भी और जुर्म अगर ना होगा मेरे नामा अमाल में एक ये जुर्म को तुमने खुदा के कलाम में अपने मजहूम को दखल दिया और अपने ख्याल को दखल दिया काफी जहन्नम में दे दिया। मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं ये करूँ, ख्वाहिश से मिला माजल्ला कभी भी नहीं होगा। अरबी जुबान का कुरान है, अरबी जुबान की रूह से ये किसी अरबी जानने वाले से पूछिए कि ये बात है या नहीं, तो नसीब मजारिया जो है हमें क्या कर रहे थे सलाह इसके माने ये है सुनिए और घूम जाइए आसमान से नहीं है वो कौन है। कहा हमने कहा है कि तुम जो रास्ता क्या हो क्या इतनी बात हम तुम्हें तुम्हारे फायदे की बता रहे हैं। तर्जुमा इसका ये है तो तुम्हें चाहिए कि तुम वही चाहो जो हम चाहते हैं। ये है खुदा का कलाम जिसको पूरा प्यारे इरादा भी दिया गया। फिर ये तीन के गलत रास्ता तो मत किया। फिर सुन लीजिए, पहले प्यारो इरादा मनाया तो कहा समन साफ कर जाएगा, ठीक है, लेकिन इतनी सी बात तुम्हारे फायदे की है तो चाहिए तुम्हें इसके बाद वो चाहिए, यानी वो अपने इख्तियार से कुछ कर रहा है, प्यार खत्म नहीं किया जा रहा। हमने कहा है अपने इख्तियार से तुम जो भी चाहे करो, तुम गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें चाहिए ये कि वो रास्ता इख्तियार करो और खुदा तुम्हारी भलाई चाहे। तुमने फैसला करना है कुछ, दोराहर आ गया सामने, दो पॉसिबिलिटीज आ गई सामने, हमने तुम्हें आजाद छोड़ दिया है, जौन का जीता अख्तियार करो। इतनी सी बात हम तुम्हें कह देते हैं कि जो रास्ता हम चाहते हैं कि तुम अख्तियार करो, तुम वो अख्तियार कर लोगे तो बड़े फायदे में होगा। और ये हमने बता दिया हुआ है कि हम क्या चाहते हैं कि तुम अख्तियार करो। सारा कुरान जिसको आप कुरान के आकाम के लिए, कुरान के अखबार के लिए, हुकूम के लिए, वो सिर्फ ये बात है कि खुदा हमारे मुतल्लिक क्या चाहता है कि तुम क्या करो, सिर्फ ये चीज है। हमारे इरादे में हमारे अंदर दखल नहीं देता वो कुछ, सिर्फ ये चीज कुरान, और ये बताना बड़ा जरूरी है। हम कहा कि तुम वही चाहो जो हम चाहते हैं कि तुम चाहो, तो फिर तो बताना जरूरी था ना इस बात में खुदा की मुसीबत क्या है। आम अल्फाज में यूं कहेंगे कि तुम अपनी मुसीबत को खुदा की मुसीबत से हम आहंग कर दो, अपनी मर्जी से, अपने इरादे से हमारी मुसीबत के साथ हम आहंग कर लो। हिम्मत अल्लाह इसी को तो कहते हैं, हमारा एक रंग है, तुमने चाहता है कि मैं अपना दुबड्डा अपना चाहता किस रंग में रंगू, यही है, तुम खुदा ही के रंग में क्यों ना रंग लो अपनी मर्जी से। हम आहंग, कुरान ने इसके लिए बहुत वाजी अल्फाज में बात की, मोमिनीन का बुलंद तरीन मकाम या उनकी उनकी हिदामत या उनके आवाज की खसूसियत, रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन्हु, लेकिन यहाँ तो फिर वही बात होगी, किया कर दो अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया, राजी हो गया। यानी आपको अपने जहन के अंदर तय करने का खुदा से राजी, ये तय क्या किया गया, फिर वही उसी तकदीर पे आ गए, राजी का रजा आपके यहाँ फिक्र है। कोई तकदीर का मतलब जितना भी चला आ रहा था ना, जबर का ईरान वमा तो शाहूना का तर्जमा किया तो नहीं, तुम क्या ही सकते बुजुर्ग के लिए खुदा का चल रही जबर, रजी अल्लाह अनहू व रजू अनहो जो है, रजी अल्लाह अनहू व रजू अनहो, इसके लिए राजी का रजा होना वही मर्जी है यार के खिलाफ में। राजी पर रजा तो आपके यहाँ एक बड़ी मजबूती चीज नहीं है। ये क्या होता है, खुद खुद राजदा न कर, जो कुछ उसकी तरफ से हो रहा है राजी पर रजा, ये इस आयत का तर्जुमा। और रजा जो है जिसको कहीं उसका अंग्रेजी वालों ने तो प्लीज भी कर दिए, ठीक है, राजी जिससे खुदा हो जाए, खुदा की रजामंदी हासिल की जाए, राजी कुछ मूल्य हासिल की जाए, ये मकसूद है ना सारा। अब अपने जहन में हम फैसला कर लेते हैं कि बस ये हमने जो कर लिया है ना, तो इसे तो खुदा राजी होगा। तुम कैसे हुए, जो उसकी तरफ से होगा, हम उसके खिलाफ हर से शिकायत तक तब तक नहीं लाएंगे उसके खिलाफ, करना तो एक तरफ रहा, हम उससे राजी हो, वही आ गए उसी जबर के ऊपर जो ईरान ने कहा तकलीफ का मतलब।
جب ایک چیز پہلے سے ذہن میں طے کر دی جائے تو پھر یہ ہے نا جو قرآن میں کہا تھا کہ اسی قرآن سے گمراہ ہوں گے جس کا ترجمہ یہ ہے. حالانکہ اس میں تو عربی زبان جانے سے رضا کے معنی ہوتا ہے ہم آہنگ ہو جانا کسی ہم آہنگ ہو جانا کسی چیز سے. نیند والی بات نہیں ہے, کنگریٹ اس سے ہم آہنگ. کہا یہ تھا کہ یہ مومن وہ ہے انہوں نے یہ کچھ کیا, وہ کیا تھا جو انہوں نے کیا, یا یہ کہ ان کا عمل ہماری نصیحت سے ہم آہنگ ہو گیا, ہماری نصیحت یا قانون کے نتائج اس کے ان کے عمل سے ہم آہنگ ہو گیا. وہ وہی چیز ہو گیا کہ کہا تھا ہم نے کہ جو چاہو راستہ اختیار کرو, انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو ہم چاہتے تھے کہ یہ کریں تو ان کا فائدہ ہو, انہوں نے وہ اختیار کیا تو ہماری مصیبت سے ہم آہنگ ہو گئے نا. یہ جیسا ہم چاہتے تھے ایسا انہوں نے اپنے اختیار سے یہ کچھ کیا, یہ کیا تو ہم نے جو کہا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ نتیجہ نکل آیا, ہم ان سے ہم آہنگ ہو گئے رضی اللہ عنہ. کیوں بنا اندر رضائے حق سبز بندہ مومن قضائے حق سبز, یہ جو ہے خدا کی رضا میں سنا ہو جانا. کہا یہی ہے جو قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہ, اگر تم اپنے چاہنے کو اپنے مقاصد کو اپنے مدعا کو اپنی آرزوؤں کو جو خدا چاہتا ہے کہ تم کرو اس کے مطابق اگر کر لو گے تو جو کچھ تم کرو گے وہ در حقیقت یہ نہیں ہے کہ تم کر رہے ہو, وہ تو خدا کی محنت کر رہی ہوگی نا. وہ بندہ حق وہ سزائے خدا بندی ہو جاتا, سزائے حق سزا بندہ مومن سزائے حق سزا. اس لیے کہ سزائے حق کیا ہے, خدا کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ راستہ اختیار کرو, تم نے یہ راستہ اختیار کر لیا تم سے سزائے حق ہو گیا. اب ایسی تمہارے تقدیر جذبہ تو خود تقدیر جذبہ کیوں نہیں ہے, خود تقدیر جو خدا چاہتا ہے تم اس کے مطابق کیوں نہیں چاہتے, اپنی مرضی ارادہ اور انتخاب آپ کا غلط نہیں کیا گیا اس کے اندر. یہی چیز ہے اس بال کو بار بار اسی چیز کے اوپر بڑا انقلاب وہ جو اس کا مجھے تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری, یہ جو اپنے ہی اپنے طور پہ تم نے جو آرزو کی اپنے طور پہ کسی کے ساتھ ہم آنگ نہیں کری تھی, تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. یہ بدلنا کیسے ہے, بدلنا کیسے تو ہم ہر وقت بدلتے ہی رہتے ہیں لیکن وہ بدلتے رہتے ہیں اپنے ہی فائدوں کے مطابق اپنے ہی آواز کے مطابق نا. بدلنا یہ ہے جو خدا چاہتا ہے نا کہ تم کرو اس کے مطابق آرزو کرے گا. آرزو کریوں تو قرآن کریم کے ڈھیر ایک رقم کا سات بتا 176 یعنی خدا کیا چاہتا ہے, یعنی وہ کیا کہتا کہ ہم کیا چاہتے تھے کہ تم بن جاؤ, بات ہو گئی نا یا پھر یہی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے تم اس کے مطابق اپنی آرزو کا کرتا. ایک آیت میں دونوں باتوں کو قرآن کہتے سات بتا سکتے ولو شئنا لرفعناہ بہا, ہم چاہتے تھے کہ قرآن کے ہم چاہتے تھے کہ تم قرآن کی روح سے حصوں اور بلندیوں تک پہنچ ہوگی نا. ایک بات کرتی تھی خدا دیا چاہتا ولکنہ اخلد الی الارض, لیکن تم ہو کہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چلتے چلے جاتے. ہم کیا خدا چاہتا ہم چاہتے تھے سونا, ہم چاہتے تھے کہ تمہیں ہم اس قرآن کی روح سے بلندی سکیں, لیکن تم ہو کہ زمین کی پستیوں کے ساتھ سمٹ کے چلے جاتے ہو. کیسے وہ تباہ ہوا ہو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے چلے جاتے, बाबा जो हम क्या किया करो वो तो कर लो, तुमको जो अपने उनके अंदर आता है अपनी ख्वाहिशात अपने जज्बात अपनी उनके मुताबिक चलते हो, जमीन की पश्चियों के साथ चलते चल जाते हो, हम क्या करें तुम आपने आपकी बुलंदियों की तरफ चले जाए। देखा खुदा जी ने की तो फिर दोनों ने फर्क किया, तो करो तुम क्या करो ये कि जो हम चाहते थे वो करो। हम क्या चाहते थे? चाहते ये थे कि तुम आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाओ, बजाय इसके कि तुम अपने ही हवा का त्याग, यानी तर्जमा हम इसका ख्वाहिशात आरजूएं अपनी अपनी ये कुछ करते हैं और लक्ष्मी, लेकिन अरब के जवान उनकी हवा के माने हर वो चीज जो नीचे की तरफ ले आएगी, हम रफा और हवा। हम चाहते थे कि तुम बुलंदियों की तरफ जाओ, हाँ उड़ान की तुम अपने ही जज्बात के ताबे अपने नफात के रस्तियों के ताबे जिंदगी बसर करके पस्त पस्तर होते चले जाते हो। तुम वो क्यों नहीं चाहते जो हम चाहते थे कि तुम करो? देखा आपने बात क्या की, एक ही आयत के और इस किस्म की तो दूसरी आयत को हम चाहते ये है कि तुम ये, हम चाहते ये है कि तुम ये बन जाओ, और कुरान की खसूसियत सुबरा जो बयान की या इकबाल में एक मिसरे में ये के साथ इस्लामी निजाम क्या करता है, खुदा के मुताबिक अमल किया जाए कुरान से क्या होता है, एक मिसरे में आके हक नी खाहद ये कुरान तुम्हें ऐसा बना देता है जैसा खुदा चाहता है कि तुम बन जाओ। जो खुदा चाहता है वो सोचता नहीं है तुमका, वो तो अशियाए कायनात की उनको समझ लिया। हम चाहते हैं कि पानी में अख्तियार करो, ये हम तुम्हें बता दें, बता दिए हमने तुम्हें, ये ना अख्तियार करोगे बताने करो, ये अख्तियार कर लोगे तो क्या होगा? हाँ के हक चाहता है कि तुम ऐसे हो जाओ, कुरान तुम्हें ऐसा कर ऐसा बना देता है जो अहबाब आपने से फलसफा या एथिक्स इसके तालिब इल्म है या मुझे जानते हैं वो मालूम है, क्योंकि एक जुट्टी को समझाने के लिए इंसानी फीचर जो है हजारों साल से किस कदर पर गर्मा कर लिया, और आपने देखा कि किस आसानी से कुरान इस कारण उसने जिस आसानी से इसको हल किया, और हम फिर वहीं से वहीं चले गए जहाँ इसलिए कि उसने तान आसानी दे पर कुछ ना जिम्मेदारी से भूलते ही खुदा की मर्जी है। प्रयोग तो दे लिया आपने आपको, इसका जो फिर नतीजा भुगत रहे हैं तो वो भी कोई हम ये तो गैरत वाला हो तो उसको इसका एहसास हो जब ये कहा कि मेरी मर्जी खुदा की है जो हम ऐसे हैं तो मैं मान लगा दूंगा। ये जो कुछ थोड़ी बहुत एहसास ज्यादा होना था कि ये हमारी हालत ऐसी क्यों हो गई, ये इतनी सी खलिश मुझे कहते हैं, खत्म मुझे कहते हैं, वो भी बाकी नहीं रहती ना बाकी रही इस कौन में, तो ये खुदा की मर्जी रहती है। रोलम अंदा हो रहा तो बोलना जिसे चाहता है जो कहता है जिसे, इसके लिए कुछ हिम्मत करके इसमें से निकलना इस पश्चिम में से, तो माज अल्लाह खुदा के खिलाफ की बगावत हो गई, करके भी हो गई नजीर ये है कि हम जवाब ले रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हिम्मत भी इससे हुई है जीवा ने मन बीमार होता है बच्चा तो उसके लिए नसीहत और तकदीर के ईमान भी है कि बीमारी भी इसी तरफ से आती है, सेहत भी इसी तरफ से आती है, मौत भी इसी तरफ से आती है। ये अगर यकीन की बात हो जाए इसी के ही तो फिर तो कुछ चारा जो ही कि सीधा तारीख उसके बाद में आ गया, सवाल ही पैदा नहीं होता ना, बीमारी उसने भेज ही नहीं दिया, जितने दिन उसने बीमार उसके उसकी नजीयत में उसके उसके फैसले में है उसने बीमार रहना है, उसके बाद अगर उसका फैसला इसने मर जाना है तो मर जाना है, उसका फैसला इसने अच्छा होना अच्छा हो जाना है। जब ये यही रखो नहीं खा के वो डॉक्टरों के पीछे हकीमों के पीछे बनी बाढ़ हो रही है चले जा भागे चले, ये बीमारी आई है उसके साथ में से फिर उसके बाद जो नतीजा होना है वो भी उसमें पहले फैसला कर सकता है। तो ये सारी भाग दौड़ क्या हो रही है? समझे जी ठीक है, तकदीर भी हमारा ईमान है, लेकिन तकदीर भी तो फर्ज है। क्या बात है, ईमान की है, क्या बात है, उसको रीजे की मुनाफ्त या सहाबा नारा बन जाए या को वहां पैदा ना कर है ईमान इसके ऊपर तो ठीक है। बैठे सारी भाग दौड़ हो जाती है, मुकदमे हैं उनमें भाग दौड़ हो रही है, राजी मालियों में भाग दौड़ हो रही है, जितने काम है जिनको हासिल करना था तो ये भी हो रहा है, साथ ये भी ईमान है साथ के साथ होता था खुदा भी था। देखा आपने जब इंसान ईमान कुरान तो अजीम चीज है, जब इसका दामन छोड़ता तो कहाँ पहुंचता है, रीजन का दामन छोड़ देता है इंसान तो फिर भी बोझी कहाँ पहुंच जाता है। खाली कुरान से छोड़ के फिर असली तौर पर जब इनसे बात करो तो दो चीजें कैसे इकट्ठी हो जाती है, फैसला हुआ हुआ है इसके मुताबिक होना है, अचल है वो कोई बदल नहीं सकता, साथ तब्दील नहीं हो रही, जहां तक पहुंचा देती है ये चीज इंसान को तस्लीम तस्लीम। भाई ये क्यों ऐसा मांगो था ना, ऐसा ये मजू मे तो नहु माता मदू नदी अगली याद इन्होंने इससे इनकार किया लम्मा जा हूँ, लेकिन कहा यह कि तुम्हारे गलत मफहूम लेने से, गलत तस्वीरों से, गलत अमल करने से, अपने आप को फरेब देने से, इस किताब का कुछ नहीं है, ये फरेब दे देने से कि वो तुमको देख दे सारी दुनिया की ओर से इसके हाथ में आ जाना कि ये मोहलक नहीं होता, ये फिर भी मोहलक रहता, बड़ी कुवत वाला है ये कानून किताब। कहा तुमने इसके खिलाफ ये कुछ किया, इनकार करते हो, सरकशी करते हो, कोई बात इन ना हो किताब अजीज क्या कहा लाया है, अजीज बड़ी कीमतों का मक्सी मालिक है ये किताब, बड़े हल्दे वाला है ये कुरान का कानून, ये नहीं बदल सकता, तुम इसके खिलाफ जो भी चाहे कुरान की तरफ मंजूर कर, फरेब है, कुफर है, सरकशी है, इनकार है, ऐसी अजीज है, साहिब गलबा है, ला यातीहि अल-बातिल मिन बैनि यदैह वला मिन खल्फ تنزيل من حكيم حميد، باطل نہ اس کے سامنے آ سکتا ہے، کتاب خدا حکیم میں ٹھیک ہے جی، دعویٰ یہ ہے تحدی ہے حقیقت ہے کہ باطل اس کے نہایت سے آ سکتا ہے حقیقت قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل له، جو کچھ خدا نے انسانوں کے لیے کہنا تھا رہنمائی دینی مکمل طور پر اس کتاب کے اندر دے دی، مکمل کسی اضافے کی ضرورت نہیں، کوئی کمی نہیں اس میں رہی، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی، نہ بھی تبدیلی کر سکتی اب پر اضافہ نہیں، تغیر و تبدل نہیں، اور پھر نہ ہمیں نظر نہیں نکلا، وہ اتنا لگے گا حافظوں محفوظ ہے یہ کتاب، ہم اس کی مبارک کے دن میں مکمل ابدی غیب و تبدل محفوظ خدا کی طرف۔ اب یہ بات یہ باتیں جو ہے، یعنی جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ باتیں ہیں، وہ نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، سامنے سے تو آنا یہ ہے نا دھڑنے سے مقابلے کے اندر چھاتی کے ہاتھ رکھتے آنا چل جائے، پیچھے سے آنا کاغذ کی سے کہتے ہیں تعویل میں بھی ہوتے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حفاظت کا ذمہ آپ نے لیا ہے نا، اس کے الفاظ کی حفاظت کرتے رہیے، اسے نہیں بدل سکتے ہم، بدلے نہیں ضرورت ہی نہیں، سابقہ مذاہب کی جو مبینہ آسمانی کتابیں ہیں اس لیے وہ نظر آ گئی کہ محرم ہیں, بدل دیا گیا ان کو دوسری کتاب انہوں نے اس کے ان کا ٹھیک ہے الفاظ اسی طرح کیا کریں گے. آپ کو پتا ہے اس کتاب عظیم کے متعلق عقائد اب کیا ہیں؟ یہ مغرب زیادہ سیکولر دماغوں کی عقائد نہیں میں کہہ رہا ہوں, ان بچاروں کی کیا ضرورت ہے کہ اس قسم کا, یہ جو اجارہ دار ہیں ہمارے ہاں مغرب سے یہ ان کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. اور آج کل زیادہ واضح طور پہ بات سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ بدقسمتی سے یا خوشقسمتی سے ایک عملی مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ رجم کی سزا جو ہے یہ اسلام کے مطابق ہے, یعنی رانی کو پتھر مار مار کے مار دیا. قرآن میں ضرور یہ کہا گیا کہ اس کی سزا توڑے گا, بس کہیں اس میں یہ بات نہیں. تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ وہ ان کا قانون جو تھا اس میں یہ چیز یقینی کی طرح ہے. وفاقی شرعی عدالت نے یہ کہہ دیا کہ یہ غیر اسلامی غیر اختلاف اسلام ہے کیونکہ قرآن میں یہ اب اس کے خلاف پورے ملک کے اندر ایک طوفان لگا, ان ججوں کو ہٹا دو, منتر حدیث ہیں دوسرے مولوی صاحبان ان کی جگہ مقرر کرو, اس فیصلے کو بدلو, اپیل کرو اس کو جو قرآن میں نہیں. اتنا ہی نہیں کہ نہیں ہے, جو قرآن میں ہے اس کے خلاف ہے. عزیزہ نے مان اب تو پانی کے اندر کا ڈبکی مار دی جائے تو نہ کچھ نظر آیا کرتا نہ کچھ سنا جایا کرتا, قوم نے پانی کے اندر ڈبکی مار دی ورنہ ذرا بھی ریزنیبل میں بات کی جائے تو پوچھا جائے کہ صاحب قرآن میں تو اس کے خلاف ہے یہ آپ کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے آج کل باسن جو چل رہی ہے نا اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث اور روایات اور قیاس اور امت اور اجماع امت سب اس کے حق میں ہیں کہ جو رجم قرآن کا لفظ لکھا ہوتا ہے. قیامت آ گئی ان کی جو قرآن کے متعلق کی دلیل مانگ رہے ہیں کہ بھائی صاحب سنت تو دے وہ بھی کون سی آئے تھا اللہ نے مانی ہے رات کی آج کل جو اخباریں چھایا ہو رہی ہیں نا ان میں یہ بات کھولی ہے بڑی دلچسپ ہے یہ بات کہ باطل کیسے آتا ہے. کہا کہ صاحب قرآن میں تو یہ ہے نہیں, تم کہتے ہو کہ قرآن یہ کہنے لگے گا قرآن میں نہیں کہا یہ مزاق نہ سمجھے جو میں کہنے لگا ہوں, یہ ان کا عقیدہ ہے یہ لکھ رہے ہیں یہ تقدیر کہتے ہیں قرآن میں یہ آیت تھی اب نہیں ہے, یہ ان کے یہاں روز لکھا جا رہا ہے ان کے یہاں جو اخباروں میں دلیل دی جائے گی. اچھا کہنا کہ قرآن میں قرآن کی روح سے اٹھا لیا قرآن میں نہیں, قرآن میں تھی یہ آپ کو معلوم ہے اس قرآن کے متعلق جس کی حفاظت کا جمع خدا نے دیا ہوا عقیدہ جو ہے عقیدہ یہ ہے کہ کئی آیات پہلی کی چیز جو ہے وہ بڑی محفوظ تھی کہ بہت سی آیات ایسی قرآن میں آئی تھیں جو اس کے بعد اس میں سے اٹھا دی گئی, آئے تو نہیں اٹھا دی گئی ان کا حکم بھی اٹھا دیا گیا. چلو ہم سے تو کوئی تعلق تو نہ رہا نا, تو وہ نہ آئے تھا اس میں نہ اس کا حکم موجود ہے. بات تو اتنی رہ گئی نا کہ صاحب اس خدا کے متعلق کیا کہیں گے جس نے کہا تھا کہ ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں, کہنے لگے ٹھیک ہے اس نے نازل کیا اس نے اٹھا لیا کسی چاچے لگ جائے گی. کہا کہ صاحب یہ کچھ بتا تو دیجیے نا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ کے قرآن کریم کو پھیلا ہوا تھا بھائی, کم از کم 12 لاکھ اربا میل مملکت کے اندر, وہاں تو بہرحال ہر مسلمان کے پاس قرآن تھا اور اس میں الفاظ تھے یہ سارے تھے. یہ اتنی آیتیں اس قرآن کی یہ اس میں سے اٹھا کیسے دی گئی نکالی کیسے سمجھے جیسے ایک روایت ہے. دو صحابی تھے وہ قرآن کی ایک سورت کو اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے, ایک رات وہ اٹھے اور انہوں نے پڑھنا چاہا تو وہ उनको जन्म नहीं था। वो हजूर के पास आए, जो धीरे थी हम आपसे सुनी, हमने इधर याद की, हमने नमाजों में पढ़ते रहे आपके सामने चढ़ाते रहे, आपने फरमाया ठीक है। कहने के रात हम उठे नमाज में पढ़ने के लिए, तो वो हमें याद ही नहीं आ रहे। आपने फरमाया कि वो इस तरह अल्लाह ताला कुरान की सीरतों को उठा लिया था। तो ये तो उठा ली, मैंने कहा ठीक है, सीरतें भी उठा ली, उनका हुक्म भी उठा लिया। वो कहते हैं कुरान में एक से ये किस किस्म की आयतें, वो चला जाते हैं। कहते हैं दूसरी वो आयतें हैं कि वो आयतें तो कुरान में से उठा ली, उनका हुक्म बाकी है, आज की बात बयान कर रहे हैं। हजार साल से ये आकाश कर रहा है कि कुरान में आयतें नहीं है लेकिन उनका हुक्म बाकी है। कहा ये आया रजम उसने, जब हम कहते हैं कि कुरान की रूह से भी रही है तो वो ये है, तुम तलब करके मुतालबा करते हो तो आयत दिखाओ, तुम्हारा ये अकीदा नहीं है, मुनकर हो तुम कुरान के, तो वो कुरान में आयत नहीं है, तो हुक्म है उसका। तो दूसरी कैटेगरी आ गई, आयतें नहीं है तो हुक्म का। तीसरी कैटेगरी की कुरान में ये है, कुरान करीम की आयतें तो हैं कुरान के अंदर, उनका हुक्म मंजूर, क्योंकि उसमें वो आयतें जिनका हुक्म नहीं बाकी रहा उनको तो रखा हुआ था लोकार देने किताब आयतें मौजूद है उनका हुक्म नहीं, मनसूख हो गई। बहुत अच्छा जी, जिसने किताब नाजिल की किसी को आप पहुंचा था ना कि वो ये कहे इसके बाद कि हमने ये आयतें नाजिल की थी, हम मनसूख करते हैं उनको, ठीक है। इंसानों के बनाए हुए कानून के साथ तो रोज में होता है, आप यहाँ देखते हैं कानून एक जारी होता है, थोड़े दिनों के बाद उसकी अमेंडमेंट स्लिप जारी, उसकी एग्रीगेशन खड़ा हो जाती है, तो ये मनसूख कर दी जाती है, ये होता है। लेकिन वो चीज को जाया करते हैं, अदालत में जब कोई वकील गाँव को पेश करता है तो अगला कहता है कि ये देखिए साहब ये जो है ये मनसूख हो चुकी है, उसकी सनद देनी पड़ती है। कुरान में आयते हैं जो मनसूख हो चुकी है, जिनका हुक्म और कुरान में कहीं नहीं, खुदा ने कहा कि हमने इस आयत को मंजूर कर दिया। अरे भाई कुरान में तो कहीं नहीं है, वो किसने मनसूख किया, कहा है मैं तस्वीर में मनसूख है, कितनी आयत जब शुरू से ये बात हुई, आकाम की आयतें होंगी ना जो मंजूर होती, एकदम किया था बाद में शुरू में 500 आयतें कुरान। जब फैसला करना हुआ इमा तफसील का इमा तहदीस का, वो ठीक है जिस जिस के मुतालिक चीजा हो जाए वो आपस में फिर झगड़े भी उनके होते रहे, तो हर मामले में होते रहते हैं। तादाद के अखबार से उनके यहाँ ये तय नहीं है कि तराजियों की तादाद कितनी है, वो आदमी बताते हैं डीसी बताते हैं, तो कुरान की आयतें कितनी मंसूख है जब खुद ही तय करना हुआ कि तराज अब हुई 500 आयतें थी, फिर आहिस्ता 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 बात समझी के अंदर ये सिमरती रही, काम होती रही, घटती रही, ये कुछ होता रहा। लेकिन उसके लिए अथॉरिटी जो है उसकी नहीं, कुरान नाजिल किया था ना, फैसला इनका है। आप दोनों तरफ से आप देख ले गुंजाइशें की थी, ये हुक्म जो है नाफिज होगा रजनी आप समझ उसकी, तो कुरान ने नहीं कहा था टीका के अंदर, तो कुरान ने तो ये है कहा कि आज मंसूर हो जाएगी बिल्कुल, आज ये कैसे हुआ ये कहते हैं हम लोग तो ये मंसूर हो, इसने कहा था कि ला जाती हिल बातों में भय में जो भय है गदाम में फल से ही बातिल में, हमने इससे आ सकेगा मुकाबले में न पूछ के आ सकेगा। इन्होंने कहा कि हम बताते हैं आप सामने से आके बता दिया कि कुरान में ठीक आयत अब नहीं है, हुक्म उसका बाकी है चलेगा। پیچھے سے کہہ دیا کہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے.
کوئی نئی بات ہے. وما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل ان ربک لذو مغفرۃ ذو عقاب علیم. کوئی نئی بات نہیں. مذہبی پیشوائیت میں ہمیشہ یہ مگر جب یقین کتاب اب آئے بھی نہیں تو مجھے کوئی نہ آگے نہیں ملی. آپ فتوا دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے, حکم خداوندی یہ ہے. دوسری جگہ ہے وہ آئے وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہوا ہوگی اور وہ خدا کی بات ہوتی نہیں ہے. یہ سارا کچھ یہاں ریپیٹ ہو رہا ہے نا اسی طرح. وما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل. یہ ہوتا چلا یہی پھر وہ مقام جہاں انہوں نے اپنے لیے یہ اتھارٹیز لے لی تھی خدا بندی. خدا کی کتاب میں نہیں ہے یہ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی کتاب میں یہ حکم موجود ہے ہم کہتے ہیں منسوخ ہو گیا. قرآن نے کہا تھا ان لوگوں کہ انہوں نے اپنے ماں اور مشائخ کو خدا سے بڑے خدا بنا رہے ہیں. یہ خدا سے بڑے خدا بنانے والی خدا کی آیت موجود ہے قرآن میں. کہتے ہیں منسوخ ہے کیسے کہتے ہیں ہم جو کہتے اور یہ ان کا ہم جو ہے بڑا دلچسپ ہے. یہ جو یہاں آج موجود ہے نا آپ کے سامنے وہ خود نہیں وہ کہتے کہ ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سلف صالحین نے ایسا فرمایا تھا. یہ وہ سلف جو ہوتے ہیں صالحین کے اسلوب یہ سلف کون ہے یعنی جو ان سے پہلے مر گئے وہ ہو گئے نا سلف صالحین. اپنے زمانے میں یہ اپنے آپ کو نہیں کہتے. جب یہ مر جائیں گے تو یہ اخلاق کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے پھر یہ بھی سلف صالحین ہو جائیں گے. یعنی پھر ان کا جو آج کا کہنا ہے نا جو آج سند نہیں ہوں گے وہ سند اپنے جو مرجع ہوئے ہیں ان کی پیش کرتے ہیں کہ وہ سامنے نہیں ہے تو اسے وہ پیچھے. اور یہ جب مر جائیں گے تو آنے والے جو ہیں وہ ان کو کوٹ کریں گے اتھارٹی کے سل میں تعلیم لے کر مار جائے. قرآن کہتا ہے کہ ان یہود نصارا اپنے احبار اور رہبان ڈھونڈ لوں میں تو ابھی یہ احبار جو ہیں باب شریعت جنہیں کہا جاتا ہے یہ ان کی باتیں کرتا ہے اور باب شریعت کی طرف آؤں تو وہ تو پوچھا ہی نہیں کیا دیتا. لیکن بہرحال بات قرآن کی ہو رہی ہے قرآن ظاہر کی قرآن بات میں ہے ایک آپ کو معلوم نہیں اس کا. وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں نا عربی زبان کے ان کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں کچھ معنی باتیں. اصل قرآن کے معنی وہ ہیں وہ کسی زبان کی روح سے نہیں ہے. یہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے عربی مبین میں اس کو نازل کیا یہ سب کچھ کیا. کہنے کا یہ وہ تم جو خطا دی ہو نا مان کے قرآن مغفرہ برداد استفا دے تو سزا انداز قرآن کا مغز ہم نے لے لیا. یہ الفاظ جو ہیں آج اللہ یہ تو ہڈیاں ہیں جو کتوں کے آگے پھینک دی گئی اللہ ہوا ان کی ابھی بات نہیں کر رہا. یہ میں ارباب شریعت کی کر رہا ہوں اس قرآن کی روح سے یہ عقیدہ ہے. تو آپ سمجھ میں آیا نا جب انہوں نے کہا کہ صاحب قرآن کی روح سے بھی رجم جو ہے خدا نے فرض کیا تو کہا ہے کہ وہ آیت جو نہیں ہے اور قرآن میں تو یہ آیت لکھی ہوئی ہے سمجھ یہ منسوخ ہے. انہوں نے اپنے آدھار اور رحمان کو خدا سے کیوں دور خدا سے بڑے ہی خدا بنا رکھا. تو اس شرک کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کیوں ہوئی. بات دو ہی آیتیں آ جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی خدا کرے کہ میں اس کو حل کر سکتا ہوں. بہرحال قرآن نے مجھے تو یہ لکھی تو دے دی ہے کہ میرے ذہن میں تو کوئی سی چیز کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑے صاف صاف سب چیزیں آتی ہیں خدا کرے آپ کے سامنے آ جائیں. سورہ سجدہ کی 44